So today is Tuesday, the 6th of November, 2012, Punjabi Bagh, Shrimad Bhagavatam, 6th Canto, Chapter 16, Text Number 10.
आज मंगलवार है और हम छत्तीसगढ़ से जो है चर्चा करेंगे जो कि 16 अध्याय का 10वां श्लोक है.
Nasyasti priya kashtin.
Nasyasti priya kashtin.
Together, please. Nasyasti priya kashtin.
Nasyasti priya kashtin.
Na priya sva paropiva.
Priya sva paropiva.
Eka sarva diyam drashta.
Eka sarva diyam drashta.
Say it together with everybody else. It requires meditation. It requires meditation. Shravanam. Talk.
So, Maharaj bata rahe hain ki hum dhyan purvak shravan karein, dhyan purvak sunein. तो महाराज बता रहे हैं कि हम ध्यानपूर्वक सुने ध्यानपूर्वक श्रवण करें और इस पर मनन करें.
न प्रियस्व परो पीवा.
न हस्यास्ति प्रियो पीवा.
एक सर्व दियं दृष्टा.
एक सर्व दियं दृष्टा.
कृतनम गुण दोषयो.
कृतनम गुण दोषयो.
किसे कर पाए.
न हस्यास्ति प्रिया कश्चिन.
Nyayasyasti priya kashchin.
You hear the difference?
आप लोग जो हैं फर्क दिख गया होगा आपको.
It's not like we're translating here and then it's sent up to a satellite and then, you know, there's some time lag, 20 second time lag, you know. It's not like that. Okay? Yes? Just checking, huh?
Yes, sir.
Crispy! Like crisp lettuce. Anybody want to eat a soggy lettuce? A soggy carrot? Anybody want to eat a limp carrot? No. Crispy!
And
this is the Shravanam process. Perfection. Translate.
Merele.
Translate.
Yes, sir.
That's your job.
So, Maharaj is telling me, जैसे महाराज अंग्रेजी में बोलते हैं मैं तुरंत जो है उसका हिंदी में अनुवाद करूं. हाँ.
I asked you the question, can you hear the difference when you chanted properly? Can you hear the difference?
तो महाराज पूछ रहे हैं आप सबसे क्या जब आपने तेजी से बोला तो आपको क्या फर्क लगा?
It's a different effect.
तो इसका बिल्कुल अलग ही प्रभाव है.
Properly chanted, the mantras have a different effect.
तो जब साफ तरीके से संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है.
ग्रेटर स्पिरिचुअल पोटेंसी.
तो उसकी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति जो है ज्यादा होती है.
Like I say, I'm not a qualified Sanskrit teacher, but the principle is there. At least I have to teach the principle.
हो सकता है मैं संस्कृत का टीचर ना हूं लेकिन आपको सिद्धांत जोर बता रहा हूं.
नस्यास्ति
प्रिया कश्चिन.
Na priya sva paro piva.
Na priya sva paro piva.
Eka sarva diyam drashta.
Eka sarva diyam drashta.
Kartrinam guna doshayo.
Kritinam guna doshayo.
Translation.
Anuvad.
For this living entity, no one is dear, nor is anyone unfavorable. He makes no distinction between that which is his own and that which belongs to anyone else. He is one without a second. In other words, he is not affected by friends and enemies, well-wishers or mischief-mongers. He is only an observer, a witness of the different qualities of men. Okay, translation.
अनुवाद. इस जीवात्मा को ना तो कोई प्रिय है न अप्रिय. ये अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता. ये अनन्य है अर्थात ना तो मित्रों तथा शत्रुओं ना ही शुभ चिंतकों या हानि पहुंचाने वालों से प्रभावित होता है. ये मनुष्य के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है.
purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Much better. As explained in the previous verse, the living entity has the same qualities as the Supreme Personality of Godhead. Break it down.
तात्पर्य जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है जीवात्मा तथा श्री भगवान के गुण एक से हैं
But he has them in minute quantities.
किंतु जीव सूक्ष्म है जबकि परमात्मा सर्वव्यापी तथा विराट है
Of course, the word minute means very, very small.
सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा
Because it's a small particle, सूक्ष्म
क्योंकि ये छोटे अंश हैं इसे सूक्ष्म कहा गया है
Whereas the Supreme Lord is all-pervading and great.
और दूसरी तरफ से परमात्मा जो है सर्वव्यापी और विराट हैं
Prabhupada makes this point, like the Mohammedans are fond of saying, God is great.
जैसे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि मोहम्मदन जो हैं, वो बताते हैं अल्लाह जो महान है
So that is very nice statement, that's good.
तो ये बहुत अच्छी एक व्याख्या है
But Prabhupada's point is, God is great.
लेकिन प्रभुपाद बताते हैं भगवान वास्तव रूप में विराट हैं
You don't know how great he is.
लेकिन हम ये नहीं जानते वो कितने महान हैं
That's Prabhupada's point.
ये प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं
It's not enough just to say God is great.
ये काफी नहीं है अगर हम सिर्फ इतना ही कहें कि भगवान महान हैं
And although the Supreme Lord is completely inconceivable,
और भगवान एक तरीके से अचिंत्य हैं
By the mercy of the devotees and bona fide spiritual master.
लेकिन भक्त और गुरु की कृपा से
One can try to understand Krishna.
हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं
If the devotee strictly follows Vaidhi Bhakti.
अगर एक भक्त ध्यान पूर्वक से वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करता है
Then they can come to the point where gradually step by step one atom at a time
तो वो ऐसी स्थिति में आ सकता है धीमे धीमे
Krishna reveals something about himself within the heart of the devotee
कि भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में अपना ज्ञान देते हैं
of course in the Bhagavad Gita Krishna says etamam prabhajyante tam sadaiva bhajami aham
भगवान भगवद गीता में बताते हैं चौथे अध्याय में कि जो जिस तरीके से उनको शरणागत होता है उस तरीके से भगवान उसको अपना ज्ञान प्रदर्शित
All of them, meaning every living entity, as they surrender unto me, I reward accordingly.
जिस तरीके से कोई जीव भगवान की शरण लेता है उसी प्रकार भगवान जो है उसको अपने बारे में ज्ञान प्रदान करते
But
हैं
the devotees, they should pay special attention to this verse. Although it applies to every jiva in the creation, nevertheless, devotees, they should pay special attention to this shloka.
हालांकि भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक जो है सभी जीवों के लिए कह रहे हैं लेकिन भक्तों को इस श्लोक पर विशेष ध्यान देना चाहिए
Because the quality of the response given by the Supreme Lord is going to depend on the quality of the bhakti and the degree of love that's offered by the devotee. It is proportional. It is a formula.
तो महाराज बता रहे हैं जिस प्रकार एक भक्त जितनी गुणवत्ता से भक्ति करता है जितनी अच्छी तरीके से भक्ति के नियमों का पालन करता है उसी प्रकार से उसी गुणवत्ता से जो है भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं
Just like in mathematics, there are different formulae. You know, more than one formula pronounced formulae.
जैसे mathematics में formulas होते हैं
You give what you... A times B equals C minus 4. You know, this kind of formula. It's a formula and a certain result is achieved from that formula.
जैसे हम देखते हैं mathematics में formula होते हैं जैसे महाराज बता रहे हैं एक उदाहरण के रूप में A into B is equal to C minus 4 ऐसे करके फॉर्मूला होते हैं जिसका एक रिजल्ट हमें प्राप्त होता है
ऑफ कोर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नेवर मैकेनिकल लाइक दैट
सो जो कृष्ण भावना हमें तय जो है ऐसे मैकेनिकल नहीं है
कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए मैटर ऑफ द हार्ट कंडीशन
कृष्ण भावना हमें जो है एक हृदय का विषय है
लाइक प्रॉपर सेड आई हैव कम टू परफॉर्म हार्ट सर्जरी
हां तो श्रील प्रभुपाद बताया करते थे कि मैं आया हूं आपके हृदय के रोग को दूर करने के लिए
The devotion describes the different conditions of the heart.
तो भक्ति रसामृत सिंधु में अलग अलग हृदय के जो रोग हैं उनका वर्णन है.
सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टील फ्रेम. स्टील फ्रेम, स्टील एवरीवन नोज इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड.
तो एक किस्म का हृदय होता है लोहे के समान, जो कि बहुत ही सख्त होता है.
द मटेरियलिस्टिक पर्सन दैट इज स्टील फ्रेम्ड हार्ट.
एक भौतिकवादी व्यक्ति का जो हृदय होता है वो उतना ही सख्त होता है जितना लोहा होता है.
वेल इवन इन इंडिया दे यूज सम स्टील, नॉट मच, बट रीबार इज कॉल्ड, दोज लॉन्ग बार्स वी सी. द बिल्डिंग्स आर मेड आउट ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू पुट द रीइन्फोर्स्ड स्टील बिकॉज इट्स हार्डर.
जैसे जब बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है तो हालांकि सीमेंट और ईंट तो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उसमें मजबूती लाने के लिए जो है लोहे की जो है सरिये जो हैं वो लगाने पड़ते हैं.
बट अराउंड द वर्ल्ड व्हेन दे मेक दीस सुपर हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स एंड समटाइम्स यू नो देयर्स दिस कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन टू सी व्हिच नेशन कैन बिल्ड द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, यू नो कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन.
सो हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी देशों में ज्यादा जो है जब बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती हैं तब ऐसी जो है सरिये का इस्तेमाल होता है, और बहुत बार जो है एक कॉम्पिटिशन होता है कि कौन सी सबसे बड़ी बिल्डिंग बना पाएगा.
बट टू बिल्ड दे यूज जनरली लाइक इन न्यूयॉर्क सिटी, ऑल द बिग सिटीज, शिकागो इन द वेस्ट, दे यूज स्टील गर्डर. इट्स कॉल्ड स्टील गर्डर, मींस द दोस आई शेप्ड स्टील यूजुअली अबाउट ऑलमोस्ट अ फुट इन और समटाइम्स इवन बिगर इन डायमीटर, वेरी स्ट्रांग इज द पॉइंट.
तो जिस जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उसमें सरिये से भी मोटा करके गर्डर कहते हैं, जो कि आई शेप्ड होता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि बिल्डिंग जो है वो मजबूत बने.
As they're going to go up 50 stories in the sky, it must be very strong.
अगर कोई बिल्डिंग जो है 50 मंजिल ऊपर हो तो उसको जो है बहुत मजबूत होना पड़ेगा.
स्टील फ्रेम.
तो ऐसा हृदय जो है लोहे के समान हृदय जो है भौतिकवादी.
So we see that the example given in Shastra of a steel framed heart is perfect. It's completely perfect.
तो शास्त्रों में जो है एक भौतिकवादी व्यक्ति का हृदय को जो है ऐसे लोहे के समान का उसको उदाहरण दिया गया है.
और दिस इज आवर बिगिनिंग पोजीशन एज नियोफाइट डिवोटीज आल्सो. वी स्टार्ट फ्रॉम दैट पोजीशन. इट्स नॉट दैट एज सून एज आई स्टिक माय हैंड इन द बीड बैग नाउ आई एम परमहंस. इट्स नॉट लाइक दैट.
जो नौसिखिया भक्त है उनकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है. ऐसा नहीं है कि जब वो बीड बैग में अपनी उंगली डालते हैं तो तुरंत उनका हृदय बदल जाता है.
Bhaktas, yes, the most perfect devotees like Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, all Bhaktivinoda Thakur, Krishnadas Kaviraj Goswami, all the most perfect devotees, they never claim that they have love of God, never.
जो सिद्ध भक्त हैं, जो परम हंस हैं, जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्तिविनोद ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ये कभी ये नहीं कहते कि हमने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है.
चैतन्य महाप्रभु himself, he never claimed he had love of God.
चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कभी ऐसी घोषणा नहीं की कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुका है. चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते थे कि दास अनुदास, मैं उन भक्तों का दास हूं जिनके पास कृष्ण प्रेम है.
सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ स्टील फ्रेम्ड हार्ट.
तो हम उस स्थिति से शुरू करते हैं जब हमारा हृदय जो है लोहे के समान सख्त होता है.
But even this, we see practically, like I come from California, you know, California, USA.
So, Maharaj is telling me that I am from a city in America, California. I am from there.
That's earthquake country. I don't know. It's been a long time since there was a. Oh yes, big time, big time.
And there are many earthquakes. And
the California coast actually. The state of California is held together by sellotape.
तो महाराज बता रहे हैं कि जो ये स्टेट है कैलिफोर्निया, ये जो है ऐसे प्रतीत होता है जैसे टेप से जुड़ा हुआ है.
From the scientific standpoint, or from the mundane standpoint, there are so many tectonic plates. You know, the tectonic plates are coming together.
अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो कैलिफोर्निया जो शहर है उसके नीचे जो है ऐसे जमीन के प्लेट्स कहते हैं टेक्टोनिक विज्ञान में, उससे वो जुड़ा है, उसके ऊपर वो खड़ा है.
One of the longest and largest earthquake faults in the world runs the length of the state.
तो जब भूकंप आया था ऐसा कैलिफोर्निया में, तो एक दरार पड़ी थी जो कि पूरी स्टेट में जो है गुजरती है, एक कोने से दूसरे कोने तक.
They fly the airplane. The airplane is going from Southern California to Northern California. They fly up the Central Valley. There you look out the window and you can see this earthquake fault. And sometimes in some places it looks like a small canyon, you know. You can see it. It's perfectly visible, you know.
तो जब महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई हवाई जहाज से सफर करे दक्षिणी कैलिफोर्निया से उत्तम कैलिफोर्निया तक, तो उसको जो है वो दरार जो है वो बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे सकती है.
If that slips, then everything west of that point goes into the ocean. You know, mountains, everything, finished.
और वो दरार अगर बढ़ जाए, अगर वो जमीन का टुकड़ा टूट जाए, तो पूरा शहर जो है वो समुद्र में बह सकता है.
And then if you look at a map, if you look at a map of the state of California, of the earthquake faults, it's like a puzzle, looks like a puzzle. They're everywhere. It's everywhere. Hundreds of earthquake faults in the state of California.
और महाराज बताने अगर कोई मैप देखे तो उसको पता चलेगा कि उसमें ऐसे ऐसे उस शहर में बहुत सारी दरारें हैं जो कि भूकंप से पैदा हुई.
I'm driving on something here in case you were wondering.
मैं कुछ इसमें कुछ विशेष चीज बताना चाह रहा हूँ.
But when these earthquake comes, like in 1906, the heaviest earthquake in modern history was San Francisco, 1906.
महाराज बता रहे हैं कि 1906 में जो है सबसे बड़ा भूकंप जो आया था वो सैन फ्रांसिस्को के शहर में आया था.
It was 8.6 on the Richter scale. There hasn't been any earthquake anywhere in the world since that time of that strength.
महाराज बता रहे हैं कि अर्थक्वेक भूकंप जो है उसको मापने के लिए स्केल होता है रिक्टर स्केल, जो कि 10 तक होता है, उसमें 8.6 का जो भूकंप तक आया था वहां पर
कैलिफोर्निया,
और पूरा शहर जो है साफ हो चुका था उस भूकंप में.
So nowadays they figure, yes, yes, we'll solve the problem. We'll put steel girders, you know, we'll put the steel frame. That will solve the problem.
तो वैज्ञानिक लोग समझते हैं कि हम इस परेशानी का समाधान निकाल सकते हैं अगर हम लोहे की सरिया या ऐसे डालें जिससे बिल्डिंग टूटेगी नहीं.
But the point is that when the earthquake comes, that steel shakes and rattles and it twists into jalebis.
लेकिन जब भूकंप आता है तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो है वो तहस नहस हो जाती है, जलेबी जैसे जो है बन जाती है.
Sometimes, so the whole building without steel girders, by the strength power of the vibration, it just dismantles. Never mind how much steel you put into it.
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बिल्डिंग में कितना भी स्टील क्यों ना हो, लोहा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जब भूकंप आता है तो पूरे बिल्डिंग जो है वो तहस नहस हो जाती है.
What about our steel framed hearts? Then what to do?
तो अगर बिल्डिंग का यह हाल होगा तो हमारे जो एक लोहे के समान हमारे हृदय है उसका क्या होगा?
Nityanam. Jeto darpan marjanam bahamagni. Come on, I don't hear you. Everyone.
Jeto darpan marjanam. महादावक्ति निर्वापनम श्रेया केव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम जयते श्री कृष्ण संकीर्तनम.
That is the vibration that dismantles the steel framed heart. That is how we do it. By the mercy of the previous acharyas, they're giving this Mahamantra holy name. It dismantles the steel frame. It melts it down. It atomizes it. This is the parampara process given by our sampradaya.
ये जो ध्वनि है जो कि हमें परंपरा से प्राप्त होती है जब हम इसका उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो जो लोहे जैसा हमारा हृदय है तब पिघलता है.
So we have to appreciate. Otherwise, it's hopeless. Hopeless. How are you going to dismantle steel building? I mean, so strong, so powerful. You look, and they brag. You know, the engineers brag. This building is what you call indestructible. You know.
तो कभी कभी ऐसे विज्ञानी लोग जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग ही खड़ी करते हैं, तो ये दावा करते हैं कि ये बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी, लेकिन बड़े से बड़े भूकंप जो है उसको गिरा देती है. उसी तरीके से
हृदय
को पिघला सकता है.
The material scientists, engineers, very fond of bragging.
तो ये जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, ये ऐसा ऐसे दिखावा करते हैं, दावा करते हैं.
I saw an old film, a black and white film from the a clip from the 1920s.
1920 के मैंने एक फिल्म देखी थी ब्लैक एंड व्हाइट में.
It was a grand opening of a brand new bridge. Grand opening. Have you seen? Grand opening. You can find it on the computer. You've seen? You can find it on. It's worth looking at because it's a good statement about, you know, the grand opening. If you do a Google search, you know, grand opening new bridge plus this. Destruction by vibrations. You could probably find it. Clip. Yes, I've seen it.
तो उस फिल्म में दिखाया गया है एक सेतु, एक ब्रिज का उद्घाटन, और उसको टूटते हुए भी दिखाया गया.
It's supposed to be the grand opening of the bridge. It was a huge embarrassment for the engineers. Massive embarrassment for the engineers.
और जब ये उसका उद्घाटन हुआ और वो जो ब्रिज, जो सेतु था, वो टूट गया, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी शर्मनायक स्थिति थी.
Wasn't engineered properly.
जो है वो पूरे सही तरीके से नहीं बना था.
There were high winds of the area, high winds in the air that they hadn't factored. They didn't factor. You know, the Maya Yupujigan, you know, they only thought in terms of span and what it took to get across that, and they weren't, you know, designing it on a windy day, and they completely forgot what was going to happen when the high winds struck. They completely forgot.
और जब उन्होंने देखा, हालांकि जब वो बना रहे थे तो ये चीज का ध्यान रख रहे थे कि किस तरीके से वो नदी को पार कर सके ब्रिज से, लेकिन वो भूल गए कि जब वो खड़ा होगा तो तूफान के कारण जो है वो डूब के गिर सकता है. और ऐसा ही हुआ.
It was a very windy day, a grand opening day, happened to be a very windy day.
और जिस दिन उद्घाटन था उस दिन जो है एक बहुत बड़ा तूफान आया.
It was a suspension bridge. The bridge means those cables coming down going up the tower, suspension bridge.
तो उसको एक suspension bridge कहते हैं, जो है बड़ी बड़ी ऊंची ऐसे जैसे हावड़ा ब्रिज है, जैसे तारों से जो है वो ब्रिज जो है वो खड़ा किया गया.
So somehow they didn't engineer it right.
तो उन्हें ढंग से नहीं बनाया था उसको.
So the wind was playing on those chords the way you play your fingers on a harp. You know a harp? Ting 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 ting. You know, you got all these strings and you pluck the strings, you know, and the wind was playing the cables on the bridge and the whole thing started vibrating. It was amazing to see how the whole bridge, and then it going like this, like a snake. The whole bridge started moving like a snake. I saw the video. It's quite amazing. You look it up, you'll see. It's worth looking up because it's a good point, you know, a good preaching point about, oh, to see how we're so proud of our accomplishments. You know, of our engineering, but we don't have any credit to God, His perfect engineering. That, you know, we won't give any credit.
So, Maharaj बता रहे हैं, जब वो bridge बना था, तो वो जो है लंबी-लंबी तारों से खड़ा था. तो जब तेज से तूफान आया, तो तारे जो है जोर से हिलने लगी, और जो पूरा bridge जो है सर्व के भांति जो है ऊपर-नीचे होने लगा, और सबके सामने जो है वो bridge ढह गया. तो हमें इसका हम लोग ये उदाहरण दे सकते हैं, प्रचार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कि कैसे जो है वैज्ञानिक लोग जो है इससे बचा नहीं पाए. तो
everyone watched in dismay as the bridge was going like a snake faster, 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 and finally, boom, it just fell to pieces, the whole thing, you know?
और जैसे वो तूफान आया और ब्रिज जो है ऊपर नीचे जो है एक सर्व के भांति होने लगा, और जो है कुछ ही देर में जो है वो तहस नहस हो गया.
But the good news is, this is what can happen to our steel framed harp with this Mahamantra. Shabda Brahm. And not only Shabda Brahm of Mahamantra, but just Shabda Brahm Bhagavad Katha, all has the same power, Ladini Shakti, to dismantle the steel frame. This is the point.
लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से वो जो ब्रिज जो है वो टूट गया तूफान के जोर से, उसी तरीके से हमारा जो लोहे जैसे एक हृदय है वो हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि से जो है तहस नहस हो सकता है.
Now there are many important points in this purport, which I'll try to summarize. Briefly.
तो इस तात्पर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर मैं छूंगा और आप लोगों को बताऊंगा.
For the living entity, going to the translation again, for this living entity, no one is dear, nor is anyone unfavorable.
तो अनुवाद में ऐसा बताया गया है कि इस जीवात्मा को ना तो कोई प्रिय है ना अप्रिय.
He makes no distinction between that which is his own and that which belongs to anyone else.
ये अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता.
So this is the same principle that is given in the Bhagavad Gita chapter 5, text 18.
तो पांचवें अध्याय के 18वें श्लोक में एक ऐसा ही सिद्धांत हमें प्राप्त होता है.
Everyone repeat after me, please. Vidya vinaya sampane.
Vidya vane sampane.
Brahmane gavihastini.
Brahmane gavihastini.
Shunichaiva svapakke cha.
Sunichaiva svapakke cha.
Pandita samadarshina.
Pandita samadarshana.
The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater, or outcast. Okay.
Vidya vane sampanne, brahmani gavi hastani. Jaise ek brahman jo vidya se poorn ho aur vinay ho jiske andar, wo jo hai farak nahi karta ek hati mein, ek kutte mein, ya ek jeev mein, ek purush mein. ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया क्योंकि वो समादर्शी होता है.
So it is said Premanjana Jyoti Bhaktivedanta that when one's eyes are anointed with love of God, then they can see the truth with a capital T.
तो जब जिसकी आंखों में प्रेमांजन होता है वो सत्यता को सही रूप से देख सकता है.
Well, this is the vision that's being described in the famous verse of the Bhagavad Gita.
तो ये सिद्धांत जो है वो भगवद गीता में भी बताया गया है.
Does this mean that the person on the path of self-realization is merely, you could say, hallucinating due to their eyes being affected by spiritual ointment? Is that the meaning of this shloka?
तो इस श्लोक का क्या मतलब ये है जब श्लोक बताया महाराज ने प्रेमांजन श्रुति भक्ति विलोचनेना कि जब कोई प्रेमांजन लगता है तो कोई जो है उसको एक भ्रम हो जाता है इस चीज का या ये सत्य है.
The truth is something else.
वास्तव में सत्य कुछ और है और उस प्रेमांजन कारण उसका सब भ्रम हो जाता है.
Due to the ecstasies of spiritual life, the highly placed or self-realized who has at least achieved Brahman realization sees things differently, can't see what's actually going on because they're just, you know, you could say intoxicated by spiritual, you know, feeling good. Is that what's happening in their vision? You see?
तो क्या ऐसा होता है कि भक्त जो है जब उन्नत स्थिति में होता है तो भावुक होने के कारण जो है वो सत्य को नहीं देख पाता?
No, why not?
ऐसा क्यों नहीं होता?
Loud. Transcendental.
क्योंकि उसकी आध्यात्मिक आंखें होती हैं तो भगवान को का साक्षात दर्शन कर पाता है.
In other words, what that person who has achieved that level of advancement described in 518 Bhagavad Gita here, that person on the path who has achieved that level, they're seeing the actual truth. Whereas in the bodily concept, locked in the bodily concept, locked into the mental platform, then the vision is blinded. Can't see the truth. So the actual truth is described in this shloka. And the shloka 518 in Bhagavad Gita, the truth is described. And in this shloka of Bhagavatam, the truth is described. And everything else is avidya, ignorance. This is the point. Matches, perfect.
तो उन्होंने प्रभुजी ने बिल्कुल ठीक बताया. जब कोई आध्यात्मिक स्तर पे होता है तो सही सही देख पाता है, लेकिन कोई भौतिक स्तर पे होता है, शारीरिक या मानसिक स्तर पे होता है, तो उसकी आंखें जो है ढकी होती हैं, वो सही नहीं देख पाता. जैसे इस श्लोक में बताया गया है भगवद गीता या भागवतम में.
Let me read again from the shloka, you'll see what a perfect fit it is, you know. For this living entity, no one is dear.
तो महाराज इस श्लोक में अनुवाद दोबारा दोहरा रहे हैं जिसमें बताया गया है इस जीवात्मा को ना तो कोई प्रिय है ना अप्रिय.
Nor is anyone unfavorable.
तो ना कोई प्रिय है ना अप्रिय.
He makes no distinction between that which is his own.
वो अपने पराये में कोई भेदभाव नहीं रखता.
And that which belongs to anyone else.
अपने में या पराये में या किसी और की वस्तु की या उसको खुद की वस्तु हो.
Not affected by friends and enemies.
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों से या शत्रुओं से.
Well wishers or mischief mongers.
शुभ चिंतकों से या जो उसको हानि पहुंचाते हो.
So we see that perfectly in the life of Prahlad Maharaj, how he was completely harassed by his demoniac father, Hiranyakasipu, but he remained Dhira, undisturbed. He was never disturbed. And no matter how harsh, how demoniac the behavior, harassed by Gundas, thrown off of cliff, fed poison, all these things, he remained Dhira, undisturbed.
ये चीज हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज की जिंदगी में कि उनके पिता जो कि बहुत बड़े असुर थे हिरण्यकश्यपु ने उनके ऊपर काफी हानि पहुंचाने की कोशिश की एक ऊंचे पर्वत से फेंक दिया और उनको जलाने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी धीर रहे विचलित नहीं हुए और एक और ऐसा उदाहरण है हरिदास ठाकुर
He never saw them as enemies. Never.
So, जो लोग उनकी पटाई कर रहे थे हरिदास ठाकुर जी की उन्होंने कभी भी उनको अपने शत्रु के रूप में नहीं
So we see in the most perfect devotees that they are living this shloka.
तो हम देख सकते हैं जो परमहंस भक्त हैं वो श्लोक को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है
No one is dear, nor is anyone unfavorable.
ना उनके कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय
The next point that He makes no distinction between that which is his own and that which belongs to anyone else.
तो उसमें कोई भेदभाव नहीं रखते जो उनकी होती है या किसी पराये व्यक्ति की.
But in a bodily concept, we see that's the main source of all the trouble in this world. The fighting, the wars historically, loba, greed, one man lusting over some other man's property, the exact opposite of what's described in this shloka.
तो हम देखते हैं भौतिक जीवन में जितनी भी लड़ाइयां होती हैं किसी एक चीज की उत्पत्ति होती है कि ये मेरा है ये उसका है लेकिन यहां हम देखते हैं बिल्कुल उल्टी बात लिखी है
So actually without the consciousness described in this fifth chapter of Bhagavad Gita this way of seeing things is impossible
तो अगर एक रूप से देखें जो भगवद गीता में सिद्धांत रखा है ये तो बिल्कुल ऐसे देखना बिल्कुल असंभव लगता है
No distinction between that which is his own and that which belongs to anyone else. For a materialist, this is massively impossible. Aham Bogi, Aham Ishwara. So thinking like this is completely out of the question.
If any bhautivadi vyakti aisi baatein sune, to usko to bilkul asambhav lagega. Ye baatein jo hain, usko asambhav lagengi.
But we see that the actuals, because this is the Brahma Bhuta platform, what's being described both. In the fifth chapter, text 18 of Bhagavad Gita, and in this tenth shloka, sixth chapter, chapter 16, Srimad Bhagavatam, both are basically explaining or describing the perfection of Brahma Buddha platform. There's many different levels within Brahma Buddha realization, but the highest perfection that is given here.
So Brahma Buddha जो स्तर है, उसकी जो सबसे ऊंची पड़ी है, वो यहाँ पर जो है भागवतम में छठे स्कंद के 16वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताई गई है
Once again, the humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle brahmana. Equal vision. So it's the exact same thing. They're saying here that doesn't make a distinction between his own and everything, things belonging to someone else. So it's the same conception. Sees with equal vision the learned gentle Brahman, cow, elephant, dog eater. That's the Brahman platform.
So, ये Brahman स्तर है, जिसमें वो एक Brahman को गाय को हाथी या कुत्ते को जो है एक समान दृष्टि से देखता है.
Which of course is defined by Krishna, Brahma Bhuta Prasanatma, na sochate, na kanchate.
और ये भगवान जो है दोबारा बताते हैं Brahma Bhuta Prasanatma, na sochate, na kanchate.
The Brahma Bhuta platform doesn't mean merging into the great white light. That's not the Vaishnava definition of Brahma platform. No.
So Brahma Bhut, जो प्रसन्न आत्मा है, जो Brahma Bhut जो स्तर है, ये ब्रह्म में लीन होने वाली बात भगवान नहीं कर रहे.
The Vaishnava conception is given in the Bhagavad Gita here. The humble sage, by virtue of true knowledge.
जो वैष्णव सिद्धांत है, वो ये है कि वास्तविक ज्ञान के कारण जो है वो एक विद्वान एक ब्राह्मण गाय हाथी को एक समान देखता है
सो दिस इज टीचिंग अस हियर व्हाट इज एक्चुअल स्पिरिचुअल विजन
तो हमें यहां से ये सीख मिलती है कि आध्यात्मिक दृष्टि क्या होती है
not affected by friends and enemies.
तो उसको अपने शत्रुओं और मित्रों से फर्क नहीं पड़ता.
Once again, this brings us to the teachings of Prahlad Maharaj.
और ये शिक्षा हमें प्रहलाद महाराज भी देते हैं.
Because as his father is furious and is shouting at Prahlad, he's only 5 years old, but his father is extremely angry, shouting at him.
जैसे हम प्रहलाद महाराज के जीवन में देखते हैं, उनके पिता हिरण्यकश्यप उनके ऊपर खूब क्रोधित होते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, खूब क्रोधित होते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं.
Why you are siding with my enemy, you rascal, you traitor?
तो हिरण्यकश्यप उनके ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम मेरे जो शत्रु है उसका साथ क्यों दे रहे हो.
You are siding with the enemy, therefore you become our enemy, you rascal.
क्योंकि तुम मेरे शत्रु का साथ दे रहे हो, इसलिए तुम भी मेरे शत्रु हो.
Prahlad Maharaj just remains transcendental. Does not become, doesn't even react to that wrath of his demoniac father. Doesn't even react.
लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल शांत रहते हैं, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
तो प्रहलाद महाराज बड़े शांति से जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जैसे महाराज दिखला रहे हैं.
So then Prahlad says, with, you know, very cool and calm and dira, same like six Goswami, same.
तो जिस तरीके से छह गोस्वामी थे, उसी तरीके से प्रहलाद महाराज भी बिल्कुल शांत और धीर अवस्था में रहते हैं.
Dira, dira, jana, jana, priya, priyo, like that, the same conception.
तो उसी तरीके से प्रहलाद महाराज बिल्कुल जो है धीर रूप में रहते हैं.
Of course, the six Goswamis are in, they are Manjaris, so they are in the Braja conception. Prahlad is more on the Vishnu side.
जो छह गोस्वामी हैं वो सब मंजरी हैं, तो वो ब्रज के भाव में हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जो हैं वो विष्णु के आराधक हैं.
Conception of Dira, that remains the same, undisturbed.
लेकिन धीर की जो स्थिति है दोनों में हमें प्राप्त होती है, मिलती है.
So, just cool, calm and collected.
तो ये बिल्कुल शांत रहते हैं और
विचलित रहते हैं. You know, a good cucumber is cool, you know, not hot and flappy.
एक अच्छा खीरा जो है वो ठंडा होता है.
Nice and cool and crispy.
ठंडा होता है और क्रिस्प होता है, सख्त होता है.
So in a very calm way, you know, Prahlad doesn't get upset by this extreme anger of his father.
तो हिरण्यकश्यप गुस्से से वो विचलित नहीं होते, शांत रहते हैं प्रहलाद महाराज.
He simply says, I've heard of men before who consider, who say, he is my friend, he is my enemy. I have heard of such men before.
तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैंने कुछ व्यक्तियों से ऐसा सुना है कि ये मेरे शत्रु हैं और ये मेरे मित्र हैं.
But now I see practically in my own father, in other words, Vigyan, you know, he sees the illustration and he's just commenting. Actually, if you think about it with extreme sarcasm, you know, I've heard about such men like you before, but now I see practically in my own father, who has declaring, he is my friend, he is my enemy, all the asuras, they are my friends, devas, they are my enemies, Lord Vishnu is my enemy. So Prahlad says, I've heard of this kind of men before, but now I see practically.
So Prahlad Maharaj कहते हैं, मैंने ऐसे कई लोगों से सुना है कि ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं, और अब मैं ये चीज आप में देख रहा हूँ कि आप कह रहे हैं असुर मेरे दोस्त हैं और विष्णु मेरे
दुश्मन.
तो जिससे जो मित्र और शत्रु को एक समान देखता है.
This is still the preaching of the boy who has been brought back to life, right? Still the boy, of course. The boy, the son of King Chitraketu, he has been brought back to life by the mystic powers of Narada and the, you know, by the mercy of the sages, he has been brought back to life, and so he's preaching.
तो ये जो हम सुन रहे हैं, ये कथन जो है उस हर्ष शोक बच्चे का है जो कि मर चुका था लेकिन पुनः जीवित हुआ नारद मुनि की कृपा से.
But previous verses in the purport Prabhupada makes the point that this so-called boy was enemy of King Chitraketu in previous lifetimes. Prabhupada makes that point.
तो इसमें प्रभुपाद जो है एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं. ये जो हर्ष शोक बच्चा था ये पूर्व जन्मों में इस चित्रकेतु महाराज का एक्चुअली में शत्रु था.
Took his birth as the son of a king just to cause him grief, his enemy, you see. His enemy took birth as the son of the king just to cause him extreme grief.
तो महाराज चित्रकेतु के शत्रु ने उनके बेटे के रूप में जन्म लिया उनको तकलीफ देने के लिए.
But when he's preaching like this, we should understand how he's preaching that. How he's preaching the absolute truth in such a crystal clear and powerful way. How he's doing like that.
तो हम लोग कैसे समझे कि वो जब सिद्धांत बता रहे हैं, जब प्रचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही सिद्धांत रख रहे हैं महाराज चित्रकेतु के सामने.
Point is, it's not him. It's not the boy that's preaching. It's simply Narada and Angira rishis. They're just using this boy's body as a puppet. That's all. This preaching is coming from Narada and Angira, not coming from the boy. Body was dead. Just like if you see a puppet is lying there's no life to it. Then you put the hand inside, it becomes animated, you can assign a voice to it, all these things.
तो जैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये अगर ये बच्चा जो है महाराज चित्रकेतु का शत्रु था तो कैसे सही सिद्धांत रख रहा है. तो महाराज बता रहे हैं वास्तविक रूप में प्रचार जो है नारद मुनि कर रहे थे. ये बच्चा जो है कठपुतली के समान था. जैसे कठपुतली है मैं अगर हम लोग उसको रस्सियों से खींचे तो जैसा आप उसको नचाना चाहते हैं वैसे वो नाचेगा. तो बच्चा जो है कठपुतली के समान नाच रहा था लेकिन नचाने वाले थे नारद मुनि.
So to further emphasize this point of Brahmabhuta platform, what it means, transcendental vision.
तो यहाँ पर जो है दोबारा उस सिद्धांत को जो है विस्तार रूप से समझाया जा रहा है ब्रह्मभूत की विस्तार को जिसमें हम एक समान दृष्टि रखते हैं.
Prabhupada quotes from Bhagavad Gita 9:29.
तो यहाँ पर भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29 श्लोक में बताया गया है.
Everyone please. Samoham sarvabhuteshu.
Samoham sarvabhuteshu.
Samoham sarvabhuteshu.
Samoham sarvabhuteshu.
Name dvishyosti na priyah.
Name dvishyosti na priyah.
Ye bhajanti tumam bhaktya.
Ye bhajanti tumam bhaktya.
Mai
te teshu chapyaham.
I envy no one.
मैं ना तो किसी से
Nor am I partial to anyone.
द्वेष करता हूँ ना किसी का पक्षपात.
I am equal to all.
मेरा तो जीव मात्र से संभव है.
But whoever renders service unto me,
परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं
in devotion,
भक्ति भाव से
is a friend,
वे मेरे प्रिय
is in me,
मुझी में स्थित हैं
and I am also a friend to him.
और मैं भी उनका मित्र हूँ.
Supreme Lord has no enemy or friend.
परमेश्वर के ना तो शत्रु हैं ना मित्र.
But he's inclined towards a devotee who always engages in his devotional service.
किंतु वह उस भक्त के प्रति दयालु हैं जो उनकी सेवा में लगा रहता है.
Similarly, in Gita 16:19, the Lord says.
उसी प्रकार भगवान भगवत गीता में 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताते हैं.
तनहं
तनहम
दुषिता क्रूरान संसारेशो
नराधमान क्षिपम यजाश्रम यजाश्रमा
क्षिपम यजाश्रमा क्षिपम यजाश्रम यजाश्रम. Remember when their Y is on the end of a word and then next word begins with a vowel like an A. Then the two are merged together. You have to remember that. Shipam yajasrama. No. There's no A in there, extra A. Shipam yajasram. Is it different in your book? Yes, no. Shipam. Majasram Ashuban. Everybody's scared. Let's try it again. Shipam yajashram ashuban ashurish ashurisho eva yonishu. Those who are envious and mischievous.
उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा कुरकर्मी
who are the lowest among men.
नराधमा को.
Yes, so this word, oh, it's the same in Hindi. Naradama, lowest among men. Very important conception from Krishna's own words.
तो ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है निराधमा जो कि श्लोक में बताया गया है.
They are cast by me into the ocean of material existence.
ऐसे लोगों को मैं भव सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ.
Into various demoniac species of life.
आसुरी योनियों में.
The Lord is extremely antagonistic towards those who are envious of His devotees.
ईश्वर उनके परम विरुद्ध रहते हैं जो उनके भक्तों से द्वेष रखते हैं.
So like in Kazakhstan, the demons who ordered the destruction and seizure of the devotee, beautiful devotee farm in Kazakhstan, the other side of the Himalayas used to be, it's a Muslim country, it's part of the, used to be part of the Soviet Union, Kazakhstan. The other side of the Himalayas from India.
तो हिमालय की दूसरी तरफ कजाकिस्तान में ऐसे कई असुर थे जो कि भक्तों का वहां पर एक उद्यान था जिसको उन्होंने कब्जा कर लिया जिसका उन्होंने विनाश करने का प्रयास किया.
They seized all the property of the devotees and they knocked down all the beautiful buildings the devotees had made, knocked it down with bulldozers and they drove them off the property with no financial compensation.
और उन लोगों ने जो है वो जमीन अपने कब्जे में कर ली और सारी बिल्डिंगें तोड़ दी और भक्तों को बाहर निकाल दिया बिना कोई धनराशि दिए.
So the future of such envious persons, there's no hell good enough for them. No hell good enough for them. They'll never get out of hell. Never.
तो ऐसे लोग जो है नरक से कभी नहीं छूट पाएंगे.
They'll remain in hell until all the living entities again return into the body of Mahavishnu. That long they will remain. Certainly.
तो उतने साल.
After such maha aparad against pure Vaishnavas, stealing the property of Krishna, certainly they will remain in hell until the dissolution of the Mahatattva. Certainly.
तो जिन लोगों ने भक्तों के प्रति ऐसा महा अपराध किया है भगवान की जमीन कब्जा करने की कोशिश की है ये लोग उतने ही साल नरक में रहेंगे जब तक सारे जीव जो है महाविष्णु के शरीर में प्रविष्ट नहीं हो जाते.
Of course, after that long punishment, as extreme worst possible punishment,
तो इतने सालों की सजा के बाद.
Because we don't believe in eternal damnation like the Christians. We don't.
तो हम ऐसा नहीं कहते कि शाश्वत रूप से वो नरक में रहेंगे जैसे कि क्रिश्चियंस कहते हैं.
After they've been in hell beyond the calculation of time and then finally go back into the body of Mahavishnu. After that.
तो जब वो इतने साल सजा भुगतेंगे नरक में जब तक सब जीव महाविष्णु के शरीर में नहीं घुस जाते उसके बाद.
They will certainly get the benefit for the number of times they said the name of Krishna.
तो जितनी बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया फिर उसका उनका फायदा उनको तब पहुंचेगा.
यू हरे कृष्णस आर फेक रिलीजन. हरे कृष्णस दैट्स नॉट रिलीजन. यू हरे कृष्णस यू आर नॉट क्रिश्चियन. यू हरे कृष्णस आर नथिंग. यू हरे कृष्णस दिस एंड हरे कृष्णस दैट. सो दे विल फाइनली इन द एंड दे विल गेट द बेनिफिट बट दैट्स नॉट गोइंग टू सेव फ्रॉम हेल आफ्टर द सेवेरिटी ऑफ दैट एनवी एंड सिन. यू सी.
तो जब ऐसे आरोप लगाते हैं तुम हरे कृष्णा ये हो तुम हरे कृष्णा वैसे हो तुम एक धोखे का एक जीवन व्यतीत कर रहे हो तो जब वो बार बार ऐसे हरे कृष्णा का नाम लेते हैं इसका फायदा उनको इतनी बड़े इतनी सालों की सजाओं के बाद उनको प्राप्त हो.
वैष्णव कंसेप्शन वी कंडेम कमिटिंग सिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग सो दैट दे विल गेट द बेनिफिट बट दे आर गोइंग टू हैव टू सफर इन हेल. आफ्टर ऑल किंग रिगा वाज अ वेरी इनोसेंट मैन. ही हैड टू सफर in the body of a lizard due to his accidental offense. What to speak of those that are heavily envious of the Supreme Lord. Of course, must very severely they have to suffer.
तो महाराज नरक को जैसे एक सर्प बनना पड़ा क्योंकि उनकी छोटी सी भूल थी लेकिन उनकी भूल के कारण भी उनको सजा सहनी पड़ी. तो इन लोगों का क्या बताएं जो कि जानबूझ के जो है भक्तों को तकलीफ दे रहे हैं.
So, Anyone have any questions, comments?
किसी का कोई सवाल है या टिप्पणी है?
पंडित जी. ओके, थैंक यू वेरी मच.
आपका बहुत बहुत
धन्यवाद. जय श्री जगन्नाथ स्वामी महादेव सुभाष की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. श्री श्री राधे कुमार की जय. नित्य गो अपने मनंदी हरे हरे बोलो.